ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की राजकीय यात्रा पर थीं। इस यात्रा में शामिल थे फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्त। फिजी और तिमोर लेस्त द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। अशोक जी, आपसे पहला सवाल है कि राष्ट्रपति मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्त खासतौर पर अगर बात की जाए तो किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा है और साथ ही में न्यूजीलैंड के दौरे पर भी थी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कितनी ऐतिहासिक और इन देशों से संबंधों के लिए ये कितना महत्व रखती है।
बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर तीन देशों में की। जैसे कि आपने स्वयं कहा शुरू में, फिजी में भारत के राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। फिजी के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। 1869 में जब हमारे यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर गया था, वहां पर गिरमी किया गए थे, वहां पर तब से हमारे संबंध हैं। और अगर देखा जाए पूरे उस देश के संदर्भ में तो वहां पर करीब एक तिहाई जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है, तो वो देश है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे 2014 में और वहां पर उन्होंने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसे कहा जाता है फिपिक, फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, तो इनकी बहुत मीटिंग्स हो गई हैं। परंतु राष्ट्रपति जी के यात्रा पर अगर हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ उनके वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहां पर जो सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड है वो उनको दिया गया, वो उससे उनको सुशोभित किया गया। दूसरा आपने कहा है तिमोर लेस्त के बारे में। तिमोर लेस्त अभी मैं कहूं तो दुनिया में सबसे नया देश बनकर उभरा है। पहले वो पुर्तगाल के अंडर था, उसकी एक कॉलोनी था, उसके बाद वो इंडोनेशिया के नीचे आया और फिर उसने लड़ाई की। जो आजकल वहां के राष्ट्रपति हैं रामोस होर्ता और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं शनाना गुस्माओ, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने बहुत भाग लिया। उन दोनों से भी मुलाकात हुई। ये नया देश है तो भारत के कोई राष्ट्रपति पहले वहां पर नहीं जा पाए हैं, तो ये उनकी पहली यात्रा थी। वहां भी उनको सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने वहां पर अनाउंस किया जो बहुत ही जल्दी तिमोर लेस्त में भारत, वहां की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में हम अपना राजदूतावास खोलेंगे। एक उसमें मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जो तिमोर लेस्त आजाद तो अभी हुआ है परंतु उसने आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो 10 देशों का गुट है, समूह है, बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है भारत की साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां का वो बस सदस्य बनने वाला है, तो इसीलिए उसका महत्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ अपने संबंधों को आगे ले जाना बहुत महत्वपूर्ण था। उनके राष्ट्रपति यहां पर अभी कुछ महीने पहले जनवरी में आए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में, और जब आए थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो मैं समझता हूं ये तीनों देश का जो दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, हमारे संबंध न केवल इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाएंगे परंतु भारत की एक जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और भारत की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको आगे ले जाने में भी बहुत ही कारगर साबित होंगे।
अभी आपने भी जिक्र करा कि तिमोर लेस्त और फिजी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी को, तो ये दोनों देशों की मजबूती को कैसे दर्शाता है और साथ ही में ओशिनिया क्षेत्र में बात करें तो भारत की पहुंच को कैसे दिखाता
है। जैसे मैंने कहा फिजी में तो भारत मूल के लोग बहुत हैं और वहां पर हमारे संबंध बहुत ही ऐतिहासिक हैं। जो अगर ओशिनिया क्षेत्र में कहा, जो ओशिनिया मैं कहूंगा एक सब रीजन बनकर उभरा है इंडो पैसिफिक का, इंडो पैसिफिक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत ने बहुत फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में बात की है। भारत सदस्य है क्वाड का और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इस क्षेत्र में उसको आगे ले जाने में भी भारत कार्यरत है। तो इन देशों के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाना ये भारत के लिए अनिवार्य हो गया है। हमने देखा है पिछले 10 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है
जी।
तो उन्होंने जो देश हैं जिनमें कभी पहले हमारे चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं गए हों, उच्च स्तरीय वहां पर यात्राएं नहीं हुई हों, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी जो सरकार है, विदेश मंत्री हैं, वो वहां पर गए हैं। उन्होंने अपने संबंधों को बढ़ाया है क्योंकि भारत का जो प्रभाव है, भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का जो पूरी दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रोफाइल है, वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए भारत को इन सभी देशों के साथ अपने संबंधों को और आगे ले जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ये न केवल जैसे मैंने पहले कहा द्विपक्षीय संबंध, चाहे राजनीतिक हों, चाहे व्यापार के हों या सांस्कृतिक हों, परंतु जिसे कहा जाए सामरिक संबंध और रीजनल जियोपॉलिटिकल जैसी बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत का इन देशों के साथ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वही न्यूजीलैंड के साथ भी है क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टर और प्लेयर बनकर उभरा है ओशियाना रीजन में, और इसीलिए वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दौरा था, यात्रा थी, वो 8 साल बाद कोई भारत के राष्ट्रपति वहां पर गए हैं। पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए थे 2016 में, उसके बाद अब ये गए हैं। वहां से भी काफी हमारे यहां पर भारत में यात्राएं उच्च स्तर पर होती रही हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति मुर्मू का वहां पर जाना और वहां पर हमारी काफी अच्छी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा है, करीब 2.5 लाख वहां पर हमारे लोग हैं, करीब 5% वहां की जो जनसंख्या है
जी।
वो भारतीय मूल की है, और वहां भी राष्ट्रपति मुर्मू ने ये ऐलान किया जो वहां के जो नॉर्दर्न आयरलैंड में ऑकलैंड जगह है जहां की सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहां पर हम बहुत ही शीघ्र अपना कॉन्सुलेट खोलेंगे जिससे कि वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी और अपने जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको भी आगे ले जाने में बहुत ही सहायता होगी।
न्यूजीलैंड का आपने जिक्र किया तो राष्ट्रपति मुर्मू ने भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो संबंध मजबूत हो रहे हैं और इनमें एक तेजी की बात करी, तो क्या आप प्रमुख बातें देखते हैं दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने में किनका ज्यादा योगदान रहा है और कौन कौन से नए अवसर तलाश किए जा रहे हैं?
देखिये, मैं समझता हूँ एक तो द्विपक्षीय अगर व्यापार को देखा जाए तो उसमें हम काफी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो छोटा देश है, और अगर भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड में थोड़ी दूरी है, तो इसीलिए दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें व्यापार और टेक्नोलॉजी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इंडियन डायस्पोरा जैसे मैंने जिक्र किया उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारे वहां पर स्टूडेंट्स बहुत संख्या में हैं, एजुकेशन एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी वहां पर उन्होंने एड्रेस किया। वहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, तो दोनों देशों के संबंध बहुत ही मधुर हैं। हमने देखा है जो पिछले कुछ महीने पहले वहां पर जो उनके उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स वो भारत में आए थे, उससे पहले उन्होंने 2020 में भी भारत का दौरा किया था एक बहुत बड़ी डेलीगेशन के हेड के प्रमुख बनकर, जिसमें कि उनके ट्रेड मिनिस्टर भी आए थे और भी कुछ मिनिस्टर आए थे। हाल ही में हमने देखा है जो कुछ भारतीय मूल के लोग वहां पर न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में भी चुने गए हैं, प्रिया राधाकृष्णन हैं, उनको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हैं, गौरव शर्मा वहां पर पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, तो ये दर्शाता है जो वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका जो प्रभाव है वो वहां पर बढ़ता जा रहा है। जब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स 2020 में भारत में आए थे तो वो प्रिया राधाकृष्णन उनकी डेलीगेशन की एक सदस्य भी बनकर आई थी, उनका भी वहां पर महत्व और बढ़ता जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भी ये दर्शाया है जो भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, और इसीलिए 2011 में उन्होंने एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो भारत की तरफ देखते हुए जो अपने सभी ओपन डोर पॉलिसी फॉर इंडिया, तो दोनों देशों में ये बहुत ही रुचि है जो एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी में कहा कि भारत जलवायु न्याय के लिए फिजी और साथी देशों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक तो ये पूरी दुनिया के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो अगर इसके साथ हमने ठीक तरीके से हमने इसके साथ डील नहीं किया तो पूरी दुनिया को बहुत आगे चलते हुए मुश्किलें आ सकती हैं, शुरू ही हो गई हैं मुश्किलें, क्योंकि हमने चाहे वो COP26 में अभी ग्लासगो में जो निर्णय लिया गया हो या उससे पहले COP21 पेरिस में जो निर्णय लिया गया हो 2015 में जो पूरी दुनिया का जो तापमान है उसको इस सेंचुरी के अंत तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे, परंतु जहां तक जैसे हालात बन रहे हैं तो वो ऐसे लगता है जो 2-3-4 डिग्री ऊपर हो सकता है अगर बिजनेस एज यूजुअल चलता है। और ये जो है जलवायु परिवर्तन, ये स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक सर्कल में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, एंटार्क्टिका में, अगर वो जल्दी पिघलना शुरू करते हैं तो जो वाटर लेवल्स हैं ओशन में, समुद्रों में, वो ऊपर आना शुरू होंगे। और ये जो छोटे देश हैं, मालदीव्स है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, इनके लिए जीवित रहना, इनके लिए पानी की सतह से ऊपर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उनसे कहना जो हम आपकी सहायता करेंगे, और भारत का इसमें जो ट्रैक रिकॉर्ड है स्पर्श जी, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसीलिए मैं समझता हूँ इन सभी देशों को बहुत ही इससे साहस मिलेगा जो भारत उनके साथ खड़ा है। अगर देखें हम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में तो भारत एक अकेला G20 का सदस्य है जिसने अपनी पेरिस कमिटमेंट्स को पूरा किया है, और कोई भी देश अपनी पेरिस कमिटमेंट को 2015 में जो हमने कमिटमेंट ली थी कोई भी पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ है। भारत ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया हमने 2015 में, 2019 में हमने CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया, अभी हमने बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया G20 का पिछले साल जब हमारे यहाँ पर सम्मेलन हुआ, ऐसे बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। तो इन सब देशों के साथ हमारा सहयोग उन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
हमने चर्चा की शुरुआत में बात करी और अभी भी पैसिफिक आइलैंड नेशंस की बात करी है, इस क्षेत्र में चीन का भी काफी दखल देखने को मिला, तो आपके विचार से जहां तक भारत की पहुंच की बात आती है तो क्या मुख्य चुनौतियां रहेंगी?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, मैंने टेंजेंशियली तो इसके बारे में कहा, मैंने कहा जो सामरिक तरीके से ये हमारे जो संबंध हैं इन देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने ये भी कहा जियोपॉलिटिकल तरीके से और इंडो पैसिफिक के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बेसिकली है क्योंकि चीन वहां पर अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, चीन अपनी पहुंच वहां पर बढ़ा रहा है, और ये देश जो है ये और ऑप्शंस चाहते हैं। उन्होंने देखा है चीन के साथ तजुर्बा कैसा है और देशों का, जो जब चीन आता है तो वो डेट डिप्लोमेसी में चले जाते हैं, उधार देशों को लेना पड़ता है उन प्रोजेक्ट के लिए जिनकी उनको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, उनकी चीन को ज्यादा जरूरत होती है, परंतु फिर वो कर्ज के नीचे दबे चले जाते हैं और चीन वहां पर उनके जो स्ट्रेटेजिक असेट्स है उनके ऊपर वो अपना कब्जा कर लेता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो रोल है वो बहुत ही अबव बोर्ड है, बहुत ही सुथरा है, जो उन देशों को जरूरत है उन देशों के लिए भारत काम करता है और उन्हीं देशों के साथ मिलकर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो दौरा है पैसिफिक आइलैंड नेशंस में भारत और इन देशों के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही अच्छी पहल होगा।
अशोक सज्जनहार जी, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और आप शामिल हुए चर्चा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSD Talks @gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।